ಜಯ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ಜಯ ರಾಧಾ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ರಾಧಾ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ರಾಧೇ
ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ರಾಧಾ
ಜಯ ರಾಧಾ ವೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ರಾಧಾ ವೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ರಾಧೇ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ನಿತಾಯಿ ಗೌರ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ತಾಯಿ ಗೌರಚಂದ್ರ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ವೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೀ
ಜಯ
ಯುಗಧರ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೀ
ಜಯ
ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಕೀ
ಜಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ
ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ರಾಮ
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ
ರಾಮ
आज के इस संध्या कार्यक्रम में 21 मई को आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। बीच में मैं कुछ समय के लिए उत्तर काशी गया था, हिमालय के गोद में। वहां पर मैं कुछ सत्संग सुन रहा था, और ऐसे नहीं कि वो बात पहली बार सुनी है, कई बार सुनी है, लेकिन कई बार सुनने पर भी कलयुग में कई बार हमको बार बार बोलना पड़ता है। कलयुग का एक वैशिष्ट्य है, कलयुग में किसी भी बात को सुनने पर वो याद नहीं रहता है। बाकी सारे युगों में ऐसा वरदान था कि हर एक व्यक्ति श्रुतिधर थे। उसका मतलब ये होता है कि आप जो भी कुछ सुनेंगे एक ही बार, वो परमानेंटली आपको याद रहेगा, दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा उसको। इस तरह का श्रवण शक्ति भगवान ने पहले युगों में दिया है, सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में। लेकिन द्वापर युग के अंत होते ही स्मृति जो है ना वो नष्ट हो जाती है। वही बात बार बार दोहराने पर भी हमको पूरी तरह समझ में नहीं आती है, और एक बार समझ में आई बाद में फिर भी भूल जाते हैं। ये कलयुग की विशेषता है। इसीलिए कलयुग में संतों ने, मतलब व्यास देव जी ने, वेद व्यास जी महाराज ने सारे शास्त्रों को थोड़ी आवाज शास्त्रों को लिख के रखा। उसके पहले ना शास्त्र लिखित रूप में नहीं थे, केवल वाणी में थे। वो हम बोलेंगे आप सुनेंगे, फिर आपने जो सुनकर ग्रहण किया है यहाँ पर पकड़ के रखा है वो आप दूसरे को बताएंगे, मतलब अपने शिष्य को बताएंगे, फिर वो जब गुरु बनेंगे तो अपने शिष्य को बताएंगे। इस तरह से कुछ भी शास्त्र लिखित नहीं था। बड़े आश्चर्य की बात, हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। आज तो हर चीज लिखित है, हमारा केस पेपर भी लिखित है। डॉक्टर को भी याद कैसे आएगा, आज 50 पेशेंट देखेंगे, कल 50 पेशेंट देखेंगे, हफ्ते भर में 100 पेशेंट देखेंगे हर रोज, और अगले मंडे को पेशेंट आएगा तो कैसे याद रहेगा, तो पेपर देखना पड़ता है। मतलब लिखना जरूरी है, लिखना होगा तो ही याद रहेगा। तो आप सब लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको कुछ भी याद रखना है कलयुग में तो क्या करना है, आपको लिख के रखना है। अगर आपको लगता है ये स्मरणीय चीज है, अगर आपको लगता है कि ये याद रखना चाहिए, ऐसी वस्तु है, तो तुरंत आपको उसको नोट करना चाहिए। और जब हम किसी व्यक्ति को नोट करते हुए देखते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये अभी इसको एक महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए वो उसको नोट कर रहा है। जो उसके लिए महत्वपूर्ण है वो लिखिएगा, हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण है इसलिए हम लिखना है। तो मैं वो जब वहां पर सत्संग सुन रहा था, भोजन करते वक्त मैं सुना करता था, तो उसमें ये जो बार बार कही हुई है सुनी हुई बात दोबारा सुनी। लेकिन कैसा होता है ना, हर चीज को उसका महत्व समझने के लिए एक वातावरण लगता है। अभी शोर के मार्केट में जाके आपको कोई गीता सुनाएगा तो आपको कैसा रहेगा। अब मार्केट में सब्जी करने जा रहे हो, बहुत लोग खड़े हैं वहां पर, तो कोई खड़ा हो गया और माइक लेके भगवत गीता पे प्रवचन शुरू कर दिया, अच्छी बात है, खराब चीज नहीं है। लेकिन वहां पर आप भगवत गीता को अच्छी तरह सुन सकते हो क्या? नहीं। वो घर में आके कोई अच्छे वातावरण में शांति से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपका मन भी शांत है, पेट में थोड़ा सा भोजन भी गया हुआ है, नींद भी पूरी हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं है, घर में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा वातावरण रहेगा तो फिर आपको वो सुनाएंगे तो आपके कप में वो बैठ जाएगा, नहीं तो किधर गिरेगा पता नहीं। तो हिमालय के दिव्य वातावरण में, चारों तरफ हिमालय, बीच में गंगा बह रही है, उसका सुंदर ध्वनि जो है ना, ऐसा है कि हजारों देवता एक साथ में अगर ओमकार का उच्चारण करते हैं तो कैसे आवाज आएगी। वैसी आवाज गंगा जी से आती है जब गंगा जी बहती है, और ये अनुभव करने जैसे बात है। यहाँ पर बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन वहां पर जाकर आपको अगर ये पता है और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों देवता एक साथ ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं, और 2400 घंटे, 12 महीने और हजारों साल वही ध्वनि चल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, निरंतर ओंकार ध्वनि चल रही है। वातावरण में बहुत पवित्रता है। उसमें ये बात दोबारा सुनी ना तो एक हृदय के अंदर के कोने में जाके बैठ गई, एकदम पेनेट्रेट, गहराई तक पहुंच गई। वो बात यह है, आपको लगेगा बहुत साधारण बात है, लेकिन बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात है। कि हम सब लोग ना हमारे दुनिया में जानते हैं कि हमको सबको कहीं ना कहीं पवित्र स्थान में जाना चाहिए, कभी ना कभी तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, पंढरपुर जाना चाहिए, कभी नासिक जाना चाहिए, कभी कहीं जाना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, कभी पर्वतों का दर्शन करना चाहिए, भगवान की लीला सुननी चाहिए, दर्शन करना चाहिए भगवान का, भगवान ने वहाँ पर क्या किया वो सुनना चाहिए। ऐसे हमारे हमारा भाग्य है, भारतीय लोगों का ये भाग्य है कि हमारे बचपन से ही ये संस्कृति ये संस्कार हमको प्राप्त है। परदेश में कोई पवित्र स्थान नहीं होते, अमेरिका जाओगे तो कौन सा होली प्लेस है वहाँ पर, अब कौन सी होली नदी वहां पर बह रही है, कुछ नहीं है। तो एक दुनिया में एक जीवन में हम कितनी परिक्रमा कितनी यात्रा कर सकते हैं बताओ। और हमारे भारतवर्ष में करोड़ों पवित्र स्थान है। हमको पता है कि महाराष्ट्र में पंढरपुर है, लेकिन महाराष्ट्र में पंढरपुर के साथ और बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे लीलाएं, भागवत में इसका वर्णन है, वैसे स्थान अभी भी उपस्थित है। तो एक जीवन में हम अपने एक जीवन में सारे कर्तव्यों को निभाते हुए सारे तीर्थों का दर्शन नहीं कर सकते, सारे नदियों का दर्शन नहीं कर सकते। अभी हमने बहुत तीर्थ यात्रा किया है, फिर भी अभी भी कुछ बाकी है, बहुत सारा चीज यहाँ पर हम नहीं जा पाए अभी तक। और नेपाल में भी है, थोड़ा भारत के बाहर जाएंगे तो श्रीलंका में भी है, अशोक वाटिका है वहां पर, जहां पर सीता जी को रखा था, बहुत सारी जगह है। और एक वृंदावन में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि 600 करोड़ पवित्र स्थान है एक वृंदावन धाम में, मथुरा मंडल के अंदर, ऐसे रूप गोस्वामी लिखते हैं। कई सार लुप्त हो गए, अभी लिखते भी नहीं किधर, वो जगह पर कई प्लॉट काट कर बिल्डिंग बन गई है अभी, तो धंधा करते हैं वहां पर, लेकिन वो था पवित्र स्थान भगवान का, अभी भी है पवित्र स्थान। तो एक वृंदावन धाम मथुरा मंडल में अगर 60,000 पवित्र स्थान और हर एक स्थान पर कोई लीला है भगवान की, तो बाकी फिर क्या करना है, हिमालय का क्या करना है, नेपाल का क्या करना है, तो सारा इसका यह है कि एक जीवन में हम सारे तीर्थ स्थान नहीं कर सकते हैं, तो करने की इच्छा तो क्या करना चाहिए। जिस जगह पर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन होता है उस जगह पर सारे पवित्र स्थान कूद आ जाते हैं, सारे पवित्र नदियां, सारे सरोवर, सारे पर्वत, सारे लीला स्थलियां उस जगह पर खुद आ जाती है। और खुद कैसे आती है, क्योंकि वो भी व्यक्ति है, जो भी एक स्थान के रूप में हम दर्शन करते हैं ना, नासिक धाम जाएंगे आप, वृंदावन धाम जाएंगे, तो व्यक्ति रूप है वो, सो भगवान की सेवा करते हैं धाम के रूप में। हिमालय भी व्यक्ति है, कई सारे हजारों पर्वतराजी है, लेकिन वो एक व्यक्ति है जो भगवान की सेवा करते हैं। विंध्य पर्वत भी एक व्यक्ति है, सह्याद्री भी व्यक्ति है, द्रोणगिरी भी व्यक्ति है, गोवर्धन जी से स्वयं विष्णु जी हैं, सारे व्यक्ति हैं। तो वो भी अपने उद्धार के लिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के स्थली पर आ जाते हैं। अब ये बात पहले भी सुनी है, लेकिन हर एक स्थिति में वही बात जब आप सुनते हो उसका अलग अलग परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि अलग अलग स्थिति में अपने अलग अलग चेतना हमारी अलग अलग हो जाती है, हमारा भाव, हमारा मूड, हमारा दिव्यता, हमारी चेतना अलग अलग हो जाती है। इसलिए वही बात जब दोबारा सुनते हैं तो आप लोगों को अलग जगह लगती है, उसका अलग तरंग निर्माण होते हैं। तो दो चीजें हमें समझना जरूरी है, एक है भगवान के नाम का कीर्तन और दूसरा भगवान की लीला। ये दो चीजें जहां होती है उसको सुनने के लिए विश्व भर के जो हमें देखे हैं, नहीं देखे हैं, देख पाएंगे या देख सकेंगे या नहीं देख पाएंगे, ऐसे सारे तीर्थ स्थल जो है व्यक्ति रूप में अदृश्य रूप में उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह पर कीर्तन हो रहा है, भगवान की कथा का वर्णन हो रहा है। कि भगवान का जो कथा है ना वो इतनी दिव्य है कि वो पतित से पतित जीव का भी उद्धार कर सकते, और अनेक प्रकार के दिव्य स्थान होते हैं, लेकिन उसमें भी एक दर्जे होते हैं और एक सर्वोच्च दिव्य स्थान होता है जहां भगवान सब उसको सबसे अधिक प्रिय रूप से मानते हैं। सर्वोच्च स्थान है श्री वृंदावन धाम, वहां पर भी भगवान लीला करते हैं, इसलिए सारे धाम और सारे तीर्थ वहां पर जाकर आश्रय ले चुके। अभी आप वृंदावन धाम में जाएंगे तो उसमें कई वन है, तो एक वन में श्रीलंका भी है, एक वन में उसी वन में रामेश्वर भी प्रकट हो गए हैं, उसी वन में गया कुंड प्रकट हो गया है, उसी वन में सेतु बंध प्रकट हो गया है, उसी वन में आदि बद्री नाथ प्रकट हो गए हैं, केदारनाथ प्रकट हो गए हैं, गंगोत्री जमुनोत्री प्रकट हो गए हैं, उसी एक ही वन में है सभी। परशुराम जी के 9 कुंड है, पांडव जी ने वहां पर तपस्या किया था उसका कुंड प्रकट है, और एक ऐसा कुंड है वहां पर विमल कुंड नाम का, जैसे प्रकट हो गया वो, उसमें 84,000 तीर्थ स्थान एक साथ प्रकट हो गए, उसके अंदर प्रवेश कर गए उसके अंदर अपने उद्धार के लिए, स्वयं के उद्धार के। राधा कुंड श्याम कुंड जब प्रकट हुआ तो विश्व के जितने भी तीर्थ थे, नदियां पर्वत कुंड थे, वो सब उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो इसका अर्थ क्या होता है कि पवित्र स्थल भी अपनी शुद्धि चाहता है, दुनिया भर के लोगों को स्नान करवा के उनके पाप स्वीकार करता है, और वो जाके एक जगह पर स्वयं स्वच्छ करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे आप हम जो किसी का पुण्य कर्म पाप कर्म स्वीकार कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो एक साधु के रूप में, फिर आप जाते हो एक नदी में, वहां पर स्नान करके वो सब छोड़ देते, और नदी आपका सब दुनिया भर का जो आपने इकट्ठा किया वो स्वीकार कर देती है, फिर वो एक और जगह पहुंच जाती है नदी देवी के रूप में, और वो एक जगह स्नान करती है। ऐसा ही चक्र है। तो दिव्य स्थानों को भी पवित्रता के लिए और शुद्धिकरण के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, संतों का संग करना पड़ता है। तो एक मैंने बताया भगवान के नाम का कीर्तन जहां हो रहा है वहां पर सारे दिव्य सलियां एकत्र हो जाती है, और बाद में भगवान की कथा जहां पर होती है वहां पर भी सारे दिव्य सलिया प्रकट होती है। तो अगर आपको एक साथ में सभी दिव्य सलियों का दर्शन संग करना है, हम लोग वहां को जाते हैं संग करने के लिए, उस भूमि का, उस नदी का, उस पर्वत का, उस तीर्थ का, उस कुंड का, सरोवर का संग करने के लिए हम जाते हैं, उनके किनारे जाके आचमन करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, उनका सर पे डालते पानी, प्रार्थना करते हैं, अर्घ अर्पण करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं, हम उनका संग चाहते हैं। तो कथा में और भगवान के कीर्तन में वो आपको आकर स्वयं संग देते हैं। इसलिए कीर्तन और कथा में आना ये मनुष्य जीवन का सर्वोच्च प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि क्या प्राप्ति हो रही है। तो जो एक बच्चा छोटा सा 2 महीने का है, भी सो रहा है, तो वहां से एक कॉकरोच आता है, कभी गांव में सांप भी आता है, बिच्छू भी आता है, तो माँ तो बच्चे को जगाए बिना वो बिच्छू को भी भगा देती है, सांप को भगा देती है, मच्छर को मार देती है, तो भी हर चीज का सहायता करते बालक को। बालक को पता है क्या क्या हुआ? बालक को जगाएगी, बोलेगी बेटा उठ जाओ, पता है कि अभी बिच्छू आया था, मैंने तुमको बचाया बिच्छू से। ऐसा कोई माँ बताती है अपने बालक को? कितने कॉकरोचों को हटा देती है, कितने मच्छरों को मार देती है, पता नहीं, लेकिन बालक को तो पता भी नहीं है, लेकिन बालक को जाने अनजाने में सारे लाभ हो रहे हैं एक ही चीज की वजह से, क्योंकि वो माँ के शरण में है, है ना, माँ के शरण में है, इसलिए बालक की हर प्रकार से वो जानता है या नहीं जानता है, सारे प्रकार की रक्षा अपने आप हो रही है उसकी। कपड़े छोटे हो रहे हैं तो बड़े कपड़े आ रहे हैं, भूख लगने के पहले ही खाने की व्यवस्था रेडी है, उठने के पहले ही उसका फीड रेडी है, उसके पहले ही उसका कपड़ा रेडी है, उसको पोंछने के लिए कपड़ा रेडी है, हर चीज रेडी है। एक ही कारण है उसका, क्योंकि उसने माँ के शरण ली है, माँ के गोद में उसके लिए सब कुछ प्राप्त है। तो उसको पता भी है नहीं पता भी, उसको पता नहीं कि जो मेरे मुंह में जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से खरीदा गया है, उसको गर्म किया गया है, ठंडा किया गया है, क्या डाला है दवा उसके अंदर, कैसे दे रहे हैं, साफ सफाई कैसे हो रही है उसकी, वो बर्तन की हो रही है, कुछ पता नहीं उसको, ऑटोमेटिक हो रहा है उसको। तो ये सब कहाँ होता है? भगवान का नाम का कीर्तन और भगवान का कथा का वर्णन कहाँ होता है बताइए? गंगा नरसिंह में होता है। बताइए कहाँ होता है? ये सत्संग में होता है। जहां सत्संग होता है वहां पर कीर्तन होता है, जहां सत्संग होता है वहां पर कथा होती है, सत्संग होता है वहां पर साध प्राप्त होता है, सत्संग होता है तो वहां पर काफी भक्तों का संग भी प्राप्त होता है। तो सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग कहते हैं जो सत्य के विषय में संग होता है उसको सत्संग कहते हैं। ऐसे नहीं अभी यहां पर सब लोग आ गए और उन्होंने एक फिल्म की कहानी बता दिया, हीरो हीरोइन की, तो बोले कि बहुत भक्त थे उसके अंदर, तिलक लगा के बैठे, धोती कुर्ता लगा कर बैठे थे, और उन्होंने अच्छा वो दीवार पिक्चर का कहानी बता दिया, बहुत सुंदर, इतना आनंद आया भाव, तो बहुत लोग रोए भी उसके अंदर, इतना भावुक लोग कथा बताया उन्होंने। तो सत्संग नहीं कहते उसको, तो विषय उसका जो है वो दुनियादारी का है। जब विषय सत्य का होता है सत्य यानी भगवान। तो जिस जिस विषय में चर्चा होती है अगर वो विषय भगवान का है तो उस संघ को सत्संग कहते हैं। और महात्मा जन उसकी और व्याख्या भी करते कि जहां बैठकर सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके मन में कई विचार चलते होंगे, कुछ समय के लिए बंद करके उसको सोचिए कि सत्संग महात्मा लोग क्या व्याख्या करते हैं। जिस संघ में बैठकर आपकी दुनियादारी की आसक्ति कम होती है उसको सत्संग है। कई लोग अपने कथा में ऐसी कथाएं बताते हैं लोगों को मनोरंजन करने के लिए कि उल्टे कथा की सुनने से दुनियादारी की आसक्ति बढ़ जाती होगी, ऐसे भी सत्संग होते हैं। भगवान का विषय चल रहा है लेकिन कथाकार उसको ऐसे प्रकार से कथा करता है क्योंकि वो खुद आसक्त है, इसलिए लोगों को भी उसको आसक्ति प्राप्त होती है उसके सत्संग में। तो सही व्याख्या वो है कि आपको जिस संघ में बैठने के बाद में ऐसा लगे कि मुझे दुनिया की आसक्ति थोड़ी कम करनी चाहिए, अभी बहुत हो गया, अब ये छोड़ के वो करना चाहिए, बहुत दिन तक किया उसको भी छोड़कर भगवान के विषय में मन और लगाना चाहिए, ऐसा जब आपको लगेगा तो आपको पता चलना चाहिए कि आपने सत्संग किया। और उस संघ में न केवल दुनियादारी की आसक्ति नष्ट होने का विचार मन में आया लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति और करने का विचार मन में आया, उसको सत्संग कहते हैं। और फिर 10वें स्कंद में 86वें अध्याय में भगवान बताते हैं 51 से लेकर 59 श्लोक तक वो उसमें वर्णन करते हैं कि सत्संग करने से उतना लाभ होता है जो मंदिरों का दर्शन करने से नहीं होता है, नदी में स्नान करने से नहीं होता है, तीर्थों की दर्शन करने से नहीं होता है, परिक्रमा करने से नहीं होता है, ये सारे से अधिक लाभ जो है सत्संग में होता है। मतलब आप नदी में स्नान करेंगे, कहीं जाकर प्रसाद पाएंगे, कोई डोनेशन देंगे, कोई तपस्या करेंगे, कोई व्रत करेंगे, कोई उपवास करेंगे, सब लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये सारे कार्यों को मिलाकर जितना लाभ होता है उससे भी अधिक लाभ सत्संग करने से होता है। ऐसा है भगवान का विषय, इतना पावरफुल है वो। और हम सब लोगों को पता होना चाहिए, चाहे आप लोग मरीज बनकर यहाँ पर आए हैं, आप लोग नर्स बनकर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, कोई और कोई प्रकार से यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग स्थिति में आप लोग, कोई पढ़े लिखे है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई नहीं सुंदर है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, हर प्रकार के लोग हम यहाँ पर बैठे हुए, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए पवित्र होने के लिए और भगवान के पास जाने के लिए सत्संग की आवश्यकता। और ये जीवन जो है ना वो उसी के लिए दिया है। आप बोलेंगे अरे प्रभु जी आप तो प्रभु जी पढ़े लिखे हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, अरे प्रभु जी आप तो धनी हो, आप तो तीर्थ यात्रा भी नेपाल की कर सकते हो, मुंबई की कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते। ये सोचना भी गलत है। आप जहां पर भी हो आपकी इच्छा रहेगी तो आपका सत्संग आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप जेब में गुड़ रखें ना गुड़, तो आपको चींटियों को आमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती है। अगर गलती से आपने कोई गुड़ डाल दिया और वैसे जाके थक के सो गए बिस्तर में तो रात भर चींटियां काटेंगी आपको, फिर साहब आपने क्या हो गया, अरे गलती से जीभ में गुड़ रह गया। तो जैसे गुड़ रखने से चींटियों को अलग से निमंत्रण लेना नहीं पड़ता है, वैसे हृदय में जब इच्छा होती है ना भगवान की तो अपने आप सत्संग प्राप्त होता है। कमी किस बात की है, बोले प्रभु जी क्या आप तो बहुत बड़े अच्छे भक्त हो, आप तो सब जगह जाते हो, हम तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें करने की इच्छा नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। इच्छा होने पर चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बना कि नहीं बताओ। ये सब हम देखते हैं लेकिन हम लोग अनदेखी करते हैं इसको। दुनिया में चीजें होते हुए देखते हैं लेकिन हम उसको भी अनदेखी करते हैं। सबसे बड़ी कमी दुनिया में है वो इच्छा की है, इच्छा नहीं है हमको, और जहां इच्छा है हम बराबर पहुंच जाते हैं। बाहुबली पिक्चर आ गया सब पहुंच गए उधर, है कि नहीं, किसी की फिल्म स्टार की डेथ हो गई सब लोग पहुंच गए उधर। जहां पर आपको कुछ वार्थ आपका है, कुछ आपकी इच्छा होगा, कनेक्शन है, अपने आप पहुंच जाते हैं वहां पर, किसी को बुलाने की जरूरत पड़ती क्या, हे महा बाहुबली पिक्चर मत देखो क्या आपको देखना ही है, आप क्या बोलते हो 300 रुपया टिकट, अरे क्या 300 रुपया, आपको देखना ही है बस फिनिश्ड। इच्छा होने पर फिर गरीब आदमी वहां पहुंच जाता है, देखो थिएटर में वाव लेके थिएटर में जाके देखो, सब लोग अमीर है क्या 300 रुपए वाले नहीं, गरीब से गरीब भी आगे पहुंच रहे हो, कर्जा लेके भी आजाद देखने के लिए, दुनिया देख रही मुझे भी देखना है, इच्छा होगी तो वहां पहुंच जाएगा, इच्छा नहीं है इसलिए हमको भगवान प्राप्त नहीं हुए। और ये इतना सरल मार्ग है कि आप कहीं भी रहोगे ना, हमारे भारतवर्ष में इतना भाग्य है पता है कि हर शाम को हर घर में सत्संग हुआ करता था, गरीब से गरीब के घर में भी, जो भारत भारतवर्ष में जन्म लिया है पुराने जमाने में, हर रोज शाम को हाथ पांव धोकर काम करने के बाद में घर में आके वॉशिंग होके लोग बैठकर रामायण महाभारत भागवत पढ़ते थे और फिर अच्छी तरह सुनने के बाद प्रसाद प्राप्त करते थे और भगवान के विचार में सो जाते थे। भाई दिन में कुछ दुख भी हो गया, कुछ कहीं ऐसा प्रसंग हो गया, फिर भी शाम को भगवान की मधुर कथा सुनकर मन शांत होकर भगवान का प्रसाद पाकर सो जाते थे, फिर दोबारा उठकर सुबह थोड़ा प्रातः विधि करके भगवान का ध्यान करके फिर काम पे जाते थे। और जब ये टेलीविजन आया तो उस समय वो सत्संग की जगह और समय टेलीविजन ने लिया, और वो बड़े बूढ़े जो पोथी लेकर बैठते थे वो भी पोथी बाजू रखकर टीवी के सामने बैठने लगे, तो सुनने वाले भी उनके साथ में टीवी के सामने बैठने लगे और सारी कथा उनकी टीवी पे होने लगी। और आजकल शास्त्र का ज्ञान भी जो टीवी बोलता है वही सुनते हैं हम लोग, सारे लोगों का नॉलेज जो है ना आज का वो सीरियल में सुना था हमने ये आज का नॉलेज का सोर्स है, जो पहले जमाने में संत हुआ करते थे हमारे नॉलेज का सोर्स, वो नॉलेज हमको देते थे, भगवान की पोथी पढ़कर सुनाते थे, भगवान के वचन सुनाते थे, भगवान को क्या कहना था वो हमको सुनाते थे, वो अभी टेलीविजन हमारा गुरु हो गया है। और अभी टेलीविजन से आगे भी क्या हो गया है, इंटरनेट, जो भी आपको नॉलेज करना है वो लॉग ऑन करो, सर्च करो और देखो वो क्या बोल रहा है, वो आपका नॉलेज है आज का। ये सब भाग्य की बात नहीं है, ये प्रगति का लक्षण नहीं है, ये दुर्भाग्य का लक्षण है, हमें पता भी नहीं है कि उसमें सही दिया गलत दिया, जो दिया वो सही मानते हैं, और गलत मान सही मान लिया तो गलत रास्ते भटक जाते हैं, क्योंकि वो अपना नॉलेज हो गया ना, उसको अनुकरण करना है। तो उस कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी हो दुनिया में, मराठी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, कुछ भी हो आप, और कोई भी पेशा आपका हो, कितनी भी धन की स्थिति आपकी हो, जीवन का उद्देश्य हमारा और आपका बदलता नहीं है। मैं धोती कुर्ता बैठकर यहां पर प्रवचन कर रहा हूं और आप वहां पर बैठ के सुन रहे हो, इसलिए मेरे जीवन का और आपके जीवन का उद्देश्य बदलता नहीं है, हमारा दोनों का जीवन का उद्देश्य एक ही है, सेम पर्पज इज देयर ऑफ लाइफ। अगर आप गरीब से गरीब हो और अमीर से अमीर हो, फिर भी आपको एंड में आपके जीवन का उद्देश्य वही होता है, ये हमको भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि तो करोड़ से करोड़पति आदमी होगा तो सारा धन उसको छोड़ के जाना है, और आप अगर कौड़ी मल हो तो भी आपको कौड़ी छोड़ के जानी है, दोनों को कुछ लेके जाने को परमिशन नहीं है, और जीवन का पर्पज सेम रहता है, कोई बदलता नहीं है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अभी ऐसा बोलना ही नहीं आप, अरे प्रभु जी आप तो क्या, आप तो कर सकते हो, आप तो पढ़े लिखे हो और आप तो धनी हो, आप तो ऐसे हो वैसे हो, और आपको बहुत सारा आपने मेहनत किया है, नहीं, मुझे जो चैलेंज है आज के लाइफ में जीवन के अंत में लक्ष्य प्राप्ति के लिए, वही सबको आपको है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, फर्क केवल इतना है कि मैं बैठ के बोल रहा हूँ आप सुन रहे, इतना ही फर्क है, लेकिन मेरी जो परीक्षा होगी अंत में वही परीक्षा आपके भी होगी, मेरे लिए कोई हार्ड परीक्षा नहीं होगी, ना मेरे लिए आसान परीक्षा होगी, ना आपके लिए हार्ड होगी आसान होगी, सबके लिए एक ही परीक्षा होगी, और वो है भगवान की याद करना। भगवान की याद करने की परीक्षा सबको है, किसी को अलग परीक्षा नहीं होगी, सेम पेपर सबके लिए होगा, और उस परीक्षा में कोई साथ में नहीं आएगा आपके, आपको प्रॉम्प्ट करने के लिए पीछे से, या कॉपी करने के लिए साथ में कोई रहेगा नहीं आपके, आपको अकेले, आपके गुरु भी रहेंगे, आपको दीक्षा भी प्राप्त हो गई होगी तो गुरु आपकी कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परीक्षा आपको ही देनी है। आप उससे, सर मेरे साथ में चलिए, मैं डर लगता है मुझे परीक्षा देने के लिए, आपको ही परीक्षा देनी है। अरे वहां पर क्यों, यहाँ पर भी आपको देनी पड़ती है, नर्सिंग की परीक्षा के लिए मम्मी आई थी साथ में आपके, जो खुद नर्स थी मम्मी आपके बोले मैं आपको पेपर लिखती हूँ आपका, नहीं आ सकता। तो अगर शॉर्ट में आपको सब तीर्थों का दर्शन करना है तो आपको सत्संग में आना है। और मुझे इतना अच्छा लगा वो दोबारा सुनकर कि हम लोग सत्संग जब करते हैं तो अभी पता नहीं हमको कि हम हमारे बीच में गंगा नदी भी है, जमुना भी बह रही है, सरस्वती बह रही है, सरयू भी बह रही है, कावेरी भी बह रही है, सिंधु नदी बह रही है, इंद्रायणी नदी बह रही है, हाँ सब पवित्र नदियां बह रही है, हिमालय भी हमारे बीच में है, विंध्य पर्वत भी हमारे बीच में है, सह्याद्री भी हमारे बीच में है, आदि बद्री केदारनाथ चार धाम भी हमारे बीच में है, द्वारका भी हमारे बीच में है, वृंदावन भी हमारे बीच में है, ये सब हमको पता नहीं है। हमको लगता है कि अभी हम मुंडवा में पासपोर्ट ऑफिस के बाजू में गंगा नरसिंह होम में बैठे हैं, ओपीडी की जगह पर कुर्सी निकालकर खाली करके बैठे हो, ऐसा हमको लगता है। लेकिन मुझे अभी भी याद है जब हम पुणे के हमारे एक मित्र का बंगला है, उसमें हम लोग ना यात्रा करते थे पहले, और चार चार पांच पांच हजार वहां पर लोग एकत्र होकर तीन साढ़े तीन दिन तक पूरा दिन रात कीर्तन प्रवचन तथा पूजा प्रसाद ग्रहण नृत्य करना यही करते थे और कुछ नहीं करते। तो हमारे गुरु जी कहते थे कि इस बंगले में, बंगले के गार्डन में अभी गंगा जी बह रही है, यमुना जी बह रही है, मुझे अभी भी याद है डिस्टिंक्टली ये बताया हुआ। और तब मुझे ये भी याद है कि मुझे उस बात पर विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसे कैसे होता है, किधर है गंगा नदी बह रही है। लेकिन अभी इतने सालों के बाद मैं बद्रीनाथ उधर उत्तरकाशी में बैठा हूं, तो मुझे उसी बात की अनुभूति हो रही है, यस दिस इज राइट, जो मैंने सुना था आज मुझे उसकी अनुभूति हो रही है कि यस, जब भक्त लोग एकत्र होकर केवल भगवान के विषय में संग करते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं, भाव विभोर होकर श्रवण करते हैं, कथा करते हैं, एक दूसरे का संग करते हैं, हम कथयंतम माम तुभ्यम बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को बोध देते हैं, भगवान के विषय में प्रेरणा देते हैं, उसी जगह पर सारी नदियां बहती है, सारे पर्वत पवित्र वहां विराजमान होते हैं। इसको समझने को इतना टाइम लगा, क्योंकि चेतना की अवस्था जब योग्य होती है ना, तभी ये बातें समझ में आती। चेतना को एक प्रकार का शुद्धिकरण आवश्यक होता है समझने के लिए भी। अब ये चश्मा क्या समझो, अंदर बहुत सारा कहीं गोबर लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, कोई दवाई का इंजेक्शन उड़ा हुआ है उसके ऊपर, उड़ता ना कभी कभी, अब लगाते तो उड़ जाता ना कभी कभी ऐसे करते हुए, सब लगा हुआ है और मैं लगा के बैठा हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सब धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा। उसके पहले मैं चश्मा अगर धो लूंगा, साफ कर लूंगा, अच्छे कॉटन कपड़े से धो लूंगा उसको, तो सब लोग मुझे ऐसे कैसे दिखाई पड़ेंगे। तो है तो आप ऐसे ही हो, खराबी किसमें है, मेरे चश्मे में। उसी तरह से हमारी चेतना में जब तक अशुद्धियां होती है तब तक हमको दुनिया की चीजें वास्तव रूप में दिखाई नहीं पड़ती, सत्य हमको समझ में नहीं आता है। मां बोल रही है बेटा टीवी मत देख, पढ़ाई कर, तुझे बारहवीं में अच्छे मार्क मिलेंगे तो जो डॉक्टर बनेगा कुछ अच्छा पायलट बन सकता है या अच्छा कुछ पेशा प्राप्त कर सकता है, तो उसको वो समझ में नहीं आता है और वो टीवी देखते रहता है। उसके बाद में जब अंक कम आते हैं तो उसको कहीं जाके और आईटीआई की नौकरी करनी पड़ती है। बुद्धिमान तो बहुत था वो, लेकिन टाइम पास करने की वजह से उसको बाद में ध्यान आता है कि अगर मेरी माँ का मैंने तब सुन लिया होता तो आज मैं कहीं और अच्छी जगह पर होता। उसी तरह से संत हमको बताते रहते हैं सत्य क्या है, लेकिन वो समझ में तब आता है जब हमारा और आपका हृदय शुद्ध हो जाता है। ये सारा जीवन है ना, मनुष्य जीवन एक पूरा एक साइंस है, पूरा कंप्लीट साइंस है, और इसको इसी रूप में हमको समझना है। ये शास्त्रीय है पूरा, इसमें कोई कपोल कल्पित मैंने बोला इसलिए आपको अच्छा लगा इसलिए आपने किया, आपने बोला इसलिए मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने किया, ऐसी बातें नहीं इसके अंदर। अच्छी लगे या नहीं लगे इसका साइंस फिक्स है। और आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रधानमंत्री हो, या और कोई पॉलिटिशियन हो, या गांव का सरपंच हो, या कोई नर्स हो, या डॉक्टर हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला सेम है आपके लिए। अरे डॉक्टर तापड़िया तो बहुत बड़े डॉक्टर है, वो तो बड़े बुजुर्ग हैं, बिजी रहते हैं, उनके लिए भगवान को प्राप्त करने का फॉर्मूला अलग है, और आप लोग गरीब हो तो आपके लिए, पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके लिए अलग फॉर्मूला है, जो है बिल्कुल अंगूठा छाप है उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ऐसा ओ ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड नहीं होता है इसके ऊपर, सब मनुष्य के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है संतों के संग में आकर उनकी शरण लेकर उनकी बात सुनना है और उसको जीवन में अमल करना है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो मैं हिमालय में इस बार चिंतन कर रहा था उसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रकर्ष से मुझे उसको अनुभूति हुई। तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने भगवान की खोज में एक संत को मिले, उनका नाम है, उस संत का नाम है चिदानंद सरस्वती महाराज। उनके थोड़े से समय में संघ में, तो हमारे गुरुदेव जवान अवस्था में थे, 19-20 साल के, और वो बुजुर्ग अवस्था में थे। उन्होंने देखा कि अरे तो अमेरिकन लड़का इतना दूर से भगवान की खोज में कहां कहां तक आया है, तपस्या कर रहा है, बहुत प्रभावित हो गए वो देख के। हम तो भारतवर्ष के संत हैं लेकिन विदेशी व्यक्ति है, फिर भी इधर खोज रहा है भगवान को, जरूर मिलेंगे भगवान। उन्होंने कहा कि भगवान की खोज में अच्छा चरित्र होना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे चरित्र का मतलब क्या है? जो झूठ नहीं बोलता, जो किसी को चीट नहीं करता, किसी को फंसाता नहीं है, सत्य बोलता है, अपने आचार सत्य शुद्ध रखता है, उसके विचार शुद्ध रहते हैं, किसी के प्रति बुरे विचार मन में नहीं आते हैं, हाँ, व्यभिचार, शराब, जुआ, नशा, किसी का नुकसान करना, किसी का बुरा सोचना, किसी की ईर्ष्या करना, और धन दौलत की अधिक लोभ रखकर किसी के लिए किसी भी कीमत पर धन कमाना, ये सब जो है ना वो दुराचार कहते हैं इसको। तो कहते हैं अगर भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आपको चलना है तो आपको एक अच्छा चरित्र निर्माण करना आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत अच्छा भजन करते हैं, व्रत भी अच्छा कर लेते हैं, खुद का अध्ययन भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब व्यवहार का प्रश्न आता है ना तो बुरा बुरा व्यवहार करते हो, स्वार्थ के लिए कभी किसी को छोड़ते नहीं है, किसी को पैसे के लिए चीट कर देते हैं, किसी को झूठ बोल देते हैं, मतलब आचार का जब समय आता है तो वो स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जब मंदिर जाते हैं तो बहुत बढ़िया, सुबह उठकर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इतना कड़क उपवास करते हैं, एकदम आपसे बहुत पावरफुली सब करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन जब किसी फ्लैट बेचने का खरीदने का समय आता है, या कोई वस्तु बेचने का समय आता है दुकान में, या कुछ और कुछ व्यवहार करने का समय आता है, तो बहुत चीटिंग का व्यवहार करते हैं। तो संत बता रहे थे कि अच्छा चरित्र होना भक्ति की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक। सामान्य व्यवहार में भी व्यक्ति को स्वच्छ चरित्र रखना चाहिए। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी भक्ति अगर है तो वो हमारे व्यवहार से लोगों को उसका दर्शन और अनुभूति होनी चाहिए। आप चाहे पढ़े लिखे हो, विद्वान हो या नहीं हो, या धनवान हो या नहीं हो, लेकिन आपका व्यवहार जब एक प्रकार का होगा तो सामने वाले व्यक्ति को पता चलना पड़ेगा, पता चलेगा और चलना चाहिए कि आप भक्त हो भगवान के। शायद धोती कुर्ता, तिलक और सब कुछ नहीं होगा भेष हमारा, लेकिन आपके व्यवहार से लोगों को लगना चाहिए कि आप भक्त हो भगवान। जैसे कि आप नर्सिंग करते हो पेशेंट, हाँ, बहुत लोग नर्सिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग नर्सिंग अपने हाथों से करते हैं और कुछ लोग दिल से करते हैं, इसमें अंतर है कि नहीं? डॉक्टर भी लोगों को हाथ से एग्जामिन करता है, लेकिन एक और डॉक्टर दिल से लोगों की देखभाल करता है, और मरीज को समझ में आता है ये डॉक्टर केवल पैसे के लिए काम कर रहा है, ये डॉक्टर तो बहुत दिल से देखभाल करता है, कभी परवाह नहीं करता है, रात में भी तैयार है आने के लिए, और हमारी देखभाल उसका एकमात्र उद्देश्य है, वो किसी भी समय पर उपलब्ध है, विश्वास के पात्र है। ये कब मालूम पड़ता है? उसके व्यवहार से पता चलता है। और आप भी नर्सिंग कर रहे हो तो सब लोग ड्यूटी करते हो, लेकिन किसी किसी के बारे में किसी मरीज को पता चलता है कि हाँ ये तो नर्स जो है ना बहुत दिल से काम करती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? व्यवहार, आपका व्यवहार ही आपके अंदर की चेतना का एक दर्पण है। आप अंदर क्या हो या आपके व्यवहार से लोगों को पता चलता है। सामने, पीछे, आगे, बाजू में जो भी व्यवहार करने का समय आता है, तब जब जिसका व्यवहार एक जैसा होता है, भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा के लिए होता है, वही व्यवहार भगवान को पसंद आता है और उसी व्यक्ति को भगवान भक्ति का दान दे देते हैं। तो सत्संग से हमको क्या प्राप्त करना है? वो जो गुरु जी थे उन्होंने क्या बताया हमारे गुरु जी को उस समय, कि अच्छा चरित्र जो है वो हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, स्थाई भाव है वो। मराठी में कहते हैं पायाभूत, यानी कि बेसिक जरूरत है हमारी। तो हम सब लोगों को देखना है जीवन में कि ये जीवन ये अच्छा चरित्र प्राप्त करने के लिए है। अभी आप लोगों से कुछ तो शादी करके कहीं चले जाएंगे, कहीं बाद में गृहस्थी बसाएंगे, बच्चे होंगे, आपका कर्तव्य बदलेगा, उम्र होगी आपकी, फिर आप लोग अभी ये डिस्चार्ज हो गए, पेशेंट हो गए, डिस्चार्ज हो गए, फिर अपने काम पे चले गए, फिर आपको अपने कर्म आपको भी और ले गए। जहां पर भी आप जाएंगे, जो भी व्यवहार करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, जो विचार करेंगे, वो पवित्रता के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि ये सब केवल मनुष्य कर सकते हैं। ये सब बातें अगर मैं जानवरों को बताऊंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, उनको केवल खाना पीना समझ में आता है, आपको समझ में नहीं आता। ये सारी बातें समझने का भाग्य केवल मनुष्य जीवन में है, केवल मनुष्य प्राणी को है। और मनुष्य प्राणी अगर ये नहीं करेगा तो कौन कुत्ता बिल्ली करेगा? क्या कुत्ता बिल्ली संत बनने के प्रवचन करेगा? ये हमारे लिए है, ये हमारा भाग्य है, अहोभाग्य हमारा है। तो इस अहोभाग्य को हम लोगों को अपने जीवन में इसी समय उतारना है। कल नहीं उतारना है, परसों नहीं करना है, अगले साल में नहीं करना है, 2021 में जब नया हुआ इलेक्शन तभी करूंगा मैं, जब ये पार्टी का राज आएगा तो करूंगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। आज करना है, अभी करना है, इसी के लिए जीवन है। और जब तक हाथ पांव ठीक है, दिमाग सही है, तब तक आप कर सकते हो। आप लोग आते ना मरीज लोग, कितने बीमार रहते हो, कितना कठिन है उस समय पे, बुखार आया उसको 104 का, पैर में ऑपरेशन हो गया है, दुख रहा है उसको, डिलीवरी हो गई, सिजेरियन से दर्द हो रहा है, उसमें कर सकते हैं क्या वो लोग? नहीं कर सकते हैं। रोग की अवस्था में कैसे आदमी भजन करेगा? तो अगर आप स्वस्थ हो तो भजन आपको तुरंत करना चाहिए। स्वस्थ अवस्था में करेंगे तो अस्वस्थ अवस्था में भी कर सकते हैं। हम लोग हमेशा बताते हैं। जैसे अभी मैं एक डॉक्टर लेडी को मिलके आया जयपुर में, तो उसको डिलीवरी हो गई है, उसके बेटा है उसको भी छोटा सा, तो पहले से वो भजन कर रही थी, इसलिए डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग और इसमें भी वो भजन कर रही है, क्योंकि उसको पहले की आदत है, बनाए रखी उसने आदत अपनी, इसलिए वो स्वस्था में भी कर पा रही है। लेकिन अगर हम उसको डिलीवरी के समय पहली बार मिले और बोले माता जी आपको जब करना चाहिए, बोले बाबू जी कैसे करूं, दिन रात तो ब्रेस्ट फीडिंग और सोना धोना यही चलते रहता है, मैं कैसे भजन करूंगी? आप बोल रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ना 6 महीने के बाद भी करूंगी, क्योंकि 6 महीने बाद मेरा बच्चा थोड़ा ठीक हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर मैं धीरे धीरे जब करूंगी। लेकिन जिसने बचपन से और जवानी में शादी के पहले और विवाह के बाद में भी जब किया है, वो उसमें भी कर सकती है, क्योंकि उसने अभ्यास किया है उसका। ये सब मैं अभी क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज आप सब लोग स्वस्थ हो और स्वस्थ रूप में मेरे सामने बैठे हो, कुछ लोगों के हाथ में आईवी भी लगा है, मैं सब देख रहा हूं। लेकिन आप उस तरह से स्वस्थ हो, यहां आने के लिए योग्य स्वस्थ हो, है ना, आ सकते हो, बैठ सकते हो, सुन रहे हो अच्छी तरह से, मतलब मन आपका अभी ओके अवस्था में है, उसी अवस्था में तुरंत भगवान का भजन करना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, जब समस्या आएगी तो भगवान के पास भागेंगे, तकलीफ होगी हे भगवान कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, ये प्रार्थना करते हैं, खाली कष्ट में उनको याद करते हैं। लेकिन कबीर महाराज कहते हैं जो सुख में भगवान को याद करता है ना, उसको दुखी नहीं होता है। सब लोग दुख होते भगवान के पास भागते हैं, तब सत्संग करने का सोचते हैं, तब भगवान का मत्था टेकते हैं, तब व्रत करते हैं, उनको दान देते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं, पुजारी को कुछ बोलते हैं, मेरी तरफ से पूजा करो, ये करो, स्पेशल पूजा करवाओ मेरे लिए, वो सब कुछ कब करते हैं? जब कुछ तुम्हारे जीवन में संकट आया तब करते हैं। लेकिन वो एक स्वार्थ का लक्षण है, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, कष्ट मिट जाए, तकलीफ खत्म हो जाए, इसलिए आप भागे हो वहां पर, इसलिए नहीं भागे कि भगवान मैं आप पर प्रेम करता हूं, मैं आपको मिलने आया हूं, मैं आपका नाम आपको पसंद करने के लिए आया हूं, नहीं, मेरा उद्देश्य क्लियर है, मैं आपका नाम ले रहा हूं, मैं व्रत कर रहा हूं, मैं आपके लिए उपवास कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहता हूं कि मेरा कष्ट जो है वो मिट जाए, और जैसे ही कष्ट मिट जाता है मैं वापस चले जाता हूं और अगले कष्ट तक वापस लौट के नहीं आता हूं। ये हमारे जीवन की असली कथा है, बस सुख आता रहे और दुख नहीं आए, इसी का सारा हमारा यात्रा चल रही है। आप सोच के देखो, हम हर समय एक ही सोचते हैं कि सुख बना रहे और दुख बीच में नहीं आए, बस दुख आए तो कैसा उसको लौटा देना है और सुख को कैसे बार बार बुलाना है, इसी में हमारा चिंता। हम सोचते हैं कि हम भागते हैं, जब करते हैं, व्रत कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा में भी देखते हैं कि कोई सीट अच्छी मिले, फ्रंट वाली, हवा वाली, और यात्रा में जब सोचते हैं कि पहले ही जाके खड़े रहेंगे तो सारे आइटम मिलेंगे, एंड में जाएंगे तो सारा स्पीड खत्म हो जाएगा, उधर भी हमारा सुख दुख का जो चक्र है ना वो चलते रहता है, किधर भी कुछ भी करो। सही भक्ति तब शुरू होती है, सुख दुख का विचार न करते हुए हम भगवान के लिए वो चीजें करेंगे तो उसको भक्ति कहेंगे। समझ में आपको आया? जब आप कुछ कर रहे हो, मैं भी जब कर रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब कर रहा हूं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है तो भगवान उसको मिटा दो, या मैं बोल रहा हूं भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपका नाम पुकार रहा हूं, प्लीज मेरी पुकार सुनो, हृदय की मेरी पुकार सुनो। जब ऐसा होगा ना तो भक्ति हो जाएगी। एक्टिविटी तो एक ही है, सब लोग जब कर रहे हैं, लेकिन कोई कर रहा है पैसे के लिए, कोई कर रहा है कष्ट मुक्ति के लिए, कोई कर रहा है मोक्ष प्राप्ति के लिए, कोई कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान ना बाय द वे सब जानते हैं, किसी के किसके हृदय में क्या है उससे आप छुपा नहीं सकते हो। हमको हम आपको और आप हमको फंसा सकते हो। और दिखा सकते भर कितने बड़े भक्त है, तो आपके मन में क्या लड्डू फूट रहे हो भगवान जानते हैं। तो बार बार वही अभी विषय कहां पर आ गया, चेतना और चरित्र। हमारी चेतना अगर भगवान के लिए है तो भगवान हमारे लिए, हमारी चेतना अगर हमारे स्वार्थ के लिए है तो भगवान अपने धाम में बैठे। तो अपने काम में तो मैं मेरे धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। अगर तू मेरे नाम में मेरे लिए व्यस्त है तो तेरे सारे कार्य सारा कल्याण मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि तू मेरे पे शरण आया है, मेरे शरण ली है तुमने, तो तुम्हारा सारा क्षेम कुशल मेरा उत्तरदायित्व है। और तुम केवल मेरे अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास में आता है तो मैं तुम्हें दे दूंगा जो चाहिए दे दूंगा, जाओ भाई, लेकिन जो असली मुझे देना है वो नहीं दूंगा, क्योंकि तुम जिसके लिए आए हो वो दे रहा हूं। अगर तुम मेरे लिए आए हो, मेरी प्रसन्नता के लिए आए हो, तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूं। तो धनी आदमी का धन चाहिए कि धनी आदमी आपको खुद चाहिए, ये आपको सोचना है। राजा के पास जाएंगे, बोलेंगे राजा बहुत भूख लग रही है, दो रोटी दे दो। राजा क्या करेगा, नहीं तुरंत दो रोटी दो, मुझको भूख लग रही है। लेकिन राजा के पास आपके जीवन भर के राशन का इंतजाम करने की शक्ति है, लेकिन आप क्या बोल रहे, राजा दो रोटी दे दो। दो रोटी दे रहे हो ना, तो नहीं बोल रहे, लेकिन राजा के आप शरण में गए तो राजा को दोबारा दो रोटी दो ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा, वो रोटी भी देगा और कपड़ा भी देगा और मकान भी देगा आपको, क्योंकि उसकी आपने शरण ग्रहण कर ली। तो मैंने पहले क्या एग्जांपल दिया था, बालक ने माता की शरण ग्रहण कर ली, उसको बार बार अप्लीकेशन देना नहीं पड़ता माँ को, माँ अभी चड्डी छोटी हो गई है बड़ी लेके आओ, अवल गिल्ला हो गया है सूखा लेके आओ, अभी सुबह जूस हो गया दोपहर को खिचड़ी का भोजन खिलाओ, अलग अलग एप्लीकेशन देना नहीं पड़ता है माँ को, माँ अपने आप सारा चीज कर लेती है, क्योंकि बालक ने माँ का शरण ग्रहण कर लिया। हमारे जीवन का यश का भी रहस्य यही है, जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट है, अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं, तो जो जो प्रयास कर रहे हैं उसका आपका फल मिलेगा आपको। लेकिन जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हो नम्रता से, तो भगवान आपकी देखभाल पूरी कर लेते हैं। क्या अंतर है उसके अंदर, भगवान में इतनी क्षमता है कि आपकी सारी जरूरतें पूरी करने की शक्ति और इच्छा वो रखते हैं और वो कर भी सकते हैं। अगर मैं कहूंगा, मैं कहूंगा कि मैं आज ऐलान करता हूं कि आज जितने लोग बैठे हैं उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, अच्छा विचार है, लेकिन मैं कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। मेरा विचार तो है कि मैं चाहता हूं मैं करूं और मैं ऐलान भी कर देता हूं, लेकिन आप जानते हो कि नहीं कर सकते, खाली बोलने की बात है। नेता कैसे बोलते हैं, करेंगे और बनाएंगे, सब जानते हैं कि ये सब केवल खुद के लिए बनाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जब बोलते हैं योग क्षेमम वहम्यहम, तो वो वास्तव रूप में आपकी देखभाल करते हैं और कर भी रहे हैं। हम जानते नहीं है, अहंकार के वजह से मानते भी नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं सबके वजह से। और सत्संग में हम लोग यही सीखते हैं, सत्संग में जो सुनते हैं बातें और जीवन में उतारने लायक बातें सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, साथ साथ में सारे पवित्र नदियों का, सारे तीर्थों का, पर्वतों का संग भी आपको प्राप्त हो रहा है। और उनके संग का मतलब क्या है, आत्मा की शुद्धि, आत्मा के कलमश और दोषों की शुद्धि उसमें प्राप्त होगी जब हम तीर्थों का दर्शन करते हैं, उसका पर्पज ये है। लेकिन एक संग के अंदर बैठ के आपको सारे तीर्थों के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है, आप चाहे जानो या न जानो, समझो या न समझो, ये कुछ अमूल्य बातें। दोबारा उसका चिंतन हुआ उत्तरकाशी में, तो ये हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। अब आप लोगों में से कुछ लोग भजन करते हैं, कुछ लोग शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग बहुत ध्यान से कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए नया विषय है, कुछ लोगों को पुराना विषय है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब लोगों का मूलभूत विषय यही है। एक्चुअली सब लोगों का मूलभूत विषय यही है जिसके लिए हम लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग भटके हुए हैं, कुछ सोचते हैं कि ये मूल विषय नहीं है हमारा जीवन का, वो हमारा मूल विषय है, बाद में देखेंगे इस विषय को। लेकिन भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर, अगर भगवान के किसी भक्त का संग प्राप्त होगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली यही हमारे जीवन का उद्देश्य। फिर जिस उत्साह से और जिस निश्चय से आप ये करोगे तो उसका लाभ आपको उस प्रकार से मिलेगा। एग्जाम के एक दिन पहले जो पढ़ाई होती है वो कैसे होती है? उस दिन हम लोग कुछ नहीं करते, खाना भी शायद नहीं खाते। माँ बोलते खा, थोड़ा तो खा ले, थोड़ा शरबत तो पी ले। दिन रात ऐसा लग रहा है कि उद्देश्य कल एग्जाम है। वो हमारे महाराष्ट्र में एक संत है, उनका नाम है गाड़गे महाराज। तो गाड़गे महाराज के पास एक आदमी आया, बोला महाराज मैं बहुत परेशान, इतनी तकलीफ है मेरी जिंदगी में, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, बीवी की तकलीफ, बच्चों की है, धन की है, बिजनेस में है, मैं बहुत परेशान हो गए महाराज। और मैं देखता हूँ आप तो एकदम मस्त रहते हैं, आपके पास ना धन है, ना बीवी है, ना बच्चा है, ना परिवार है, ना कुछ कुछ कुटुंब है आपका, कुछ है ही नहीं आपका, और इतने मस्त रहते हो आप, क्या राज क्या है इसका? तो महाराज जी बोलते हैं अरे पगले, ये तू प्रश्न कर रहा है कष्ट का, इसका उसका, तुझे पता है क्या 7 दिन के बाद तू मरने वाला है? एकदम हिल गया एकदम, बाप रे, मैं तो बोलने के लिए कुछ आया था और वो अलग ही न्यूज सुनाई पड़ी मुझे, यहाँ पर अलग ही न्यूज डिस्क्लोज हो गई। बोले महाराज क्या बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं मैं, देख रहा हूं आपके भविष्य में, देख रहा हूं 7 दिन के बाद की मृत्यु होने वाली आपकी, जाओ सबको मिलके आओ, उसको सॉरी बोलना है, उसको धन्यवाद बोलना है, जरा सबको जाके अपना हिसाब किताब करके आओ। तो बेचारा गया घर पे, जो समस्या लेके आया तो भूल गया पूरा वो। और फिर वो करीब के लोगों को मिल रहा है, आप जनों को मिल रहा है, निकट जनों को मिल रहा है, सबको जाके मिल रहा है, और किसी को सॉरी बोला, उसने कुछ का अपराध किया होगा, किसी को धन्यवाद बोला, और सब कुछ अपना प्रॉपर्टी वाट वाट के, सब बच्चों को देखे, बीवी को देखे, सब कुछ करके सब फ्री होके आ गया वो। बोले महाराज अभी आ गया मैं, अभी आप बताइए क्या करना है। तो महाराज बोलते हैं अरे तू कुछ मरने वाला वाला नहीं था, तुझे मैंने कल बताया इस स्थिति में लाने के लिए कि ये सब कुछ भूल भुलैया है। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? तो महाराज बहुत अच्छा लग रहा है, कोई टेंशन ही नहीं, सब कुछ हिसाब किताब करके मैं आ गया हूं, अभी कोई जिम्मेदारी या कोई ऐसी परेशानी कुछ है ही नहीं, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है। तो बोले आपके प्रश्न का उत्तर यही है, आपने क्या पूछा था कि आप इतने मस्त कैसे रहते हो? तो हम लोग हर दिन मरने के लिए तैयार रहते हैं इसलिए मस्त रहते हैं। कितनी गहरी बात बताई उन्होंने, कितने मतलब प्रैक्टिकल तरीके से समझाया उस आदमी को। वो प्रश्न लेके क्या आया था, मैं इतना परेशान हूं आप इतने मस्त कैसे रहते हो? तो उसको अगर बोलते वो उस समय हम लोग हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं तो वो समझता क्या उस बात को? जब उसको बताया कि तू मर रहा है तो गया और सबको थैंक यू सॉरी बोल के आया, और 7 दिन के बाद जो उसको महसूस हो रहा था कि मैं अभी मरने को कल तैयार हूँ, 7 दिन हो गए अभी, मैं कल मेरा डेथ का डेट है, मैं रेडी हूँ उसके लिए, महाराज क्या करना चाहिए बताओ। ये स्थिति में हम सब लोग साधु लोग रहते हैं हमेशा, कभी भी जाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हमारे चेहरे में कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं रहती हमारे जीवन में। हम लोग के दुखों का कारण क्या है? सब लोगों का, हम लोग फंसे हुए हैं इसमें उसमें, ये मेरा वो मेरा, हाँ ये तेरा तेरा मेरा, ये सब में लगे हुए हैं, ये मैं ये मेरा, आई मी एंड माइन, अहम ममेति, ये मैं और ये सब ये मेरा, इसमें हमारा सारा चित्त अटका हुआ है, सारे दुख का जड़ वही है। जैसे ही हम लोग इससे ऊपर उठते हैं फिर जीवन हो या मृत्यु हो हम लोग शांत रहते हैं। सत्संग में ये सीखते हैं, सत्संग में क्यों सत्संग करते हैं? ये सीखने के लिए कि जिसमें मन अटका हुआ है, जो मेरा नहीं उसमें अटका हुआ है, उसे निकालकर भगवान में लगाना, ये सत्संग है। मतलब दुनियादारी की वासनाओं की जो तीव्रता है वो अगर कम हो जाती है और वही तीव्रता भगवान में लग जाती है तो वो सत्संग होता है, वो सत्संग हो गया मतलब आपका। और वो कथा सुनी आपने और आपका दुनिया में और उस कथा में कुछ बात सुनी उधर आपका और मन लग गया तो फिर आप फंस गए उसके अंदर, तो कथा में आपका सत्संग नहीं हुआ। सत्संग यानी आपका चित्त भगवान की ओर अधिक तीव्रता से लगना चाहिए उसकी वजह से, और दुनियादारी में जो अटका हुआ उसमें से हटना चाहिए, उसी को सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग करने से हमारा जीवन आज ही धन्य है, आज से ही धन्य। आगे आप चिंता मत करो कितना जीवन बचा है, क्या होगा, दर्शन होगा भगवान का कि नहीं होगा, मोक्ष होगा कि नहीं होगा, वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन आज से ही आपका जीवन धन्य है। जब आपका मन भगवान के अंदर लगे, खुशी आनंद सुख ये सारे का रहस्य यही है और इस पर ही हमको विश्वास करना है। जब लोगों को बोलते हैं आप सब छोड़ो अभी खाली बस ये हरे कृष्ण महामंत्र लो और जप करो उसका, ये क्या महाराज कहते हैं इसमें क्या होगा, इतना सिंपल चीज में क्या होगा। अगर मैं बोलूंगा आपको शनिवार के दिन, हाँ उस दिन पंचमी होनी चाहिए, वो शनिवार जब पंचमी आता है तो पंचमी के दिन शाम को 5 बजे आपको बड़ के पेड़ के आसपास दोरी लगाकर 51 प्रदक्षिणा करना है। बोले महाराज क्या फॉर्मूला बताया आपने, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, पंचमी कभी आ रहे कुंडली निकालो, पंडित को फोन करो पंचमी शनिवार कौन सा आ रहा है बताओ अगला, वो किस तारीख को, मैं कहाँ बॉम्बे में छुट्टी निकाल के मुझे जाना है, वड का पेड़ किधर है, धागा किधर है, सब ढूंढते रहोगे। क्योंकि हमारा मन है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो सरल उपाय है उस पर हमको विश्वास लगता नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड कुछ चाहिए तो भागते हैं, कोल्हापुर जाएंगे इधर तुलजापुर जाएंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, व्रत करेंगे बोलेंगे वो दिन में वो आलू नहीं खाना है, वो सारा व्रत में आलू नहीं खाना है और वो फल का रस नहीं पीना है। ये हमारा ऐसा माइंड है क्योंकि हमारा सारा जो भक्ति वगैरह जो है ना वो स्वार्थ पर आधारित है, खुद को सुख कैसे मिले और खुद को दुख कैसे मिटे ही हमारा भजन और भक्ति है, इसी पर अटका हुआ इसी पर घूम रहा है सब कुछ, इसलिए हमको ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ निहित है कि मुझे ये करने से रोग दूर होगा, ये करने से मेरा पैसा आएगा, ये करने से समृद्धि आएगी, ये करने से प्रमोशन होगा। हमारे हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय थे, उसको हमने अच्छा प्रचार किया अच्छी तरह से समझाया और वो बहुत दिन से भजन करते करते 16 माला 2 घंटा रोज जप करने तक आया। हाँ देखो आप सुनो बराबर अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह 6 महीने हमारा चलता रहा फर्स्ट क्लास एकदम जोरदार, पहले 6 महीने मेहनत किया फिर 6 महीने उससे भजन किया, मुझे लगा अभी अब हो गया अभी सेट हो गया, तो उसका लाइफ अभी एकदम सेट हो गया। 6 महीने बाद भी मैं उसको मिला तो प्रभु जी बोला कैसे चल रहा है भजन आपका वगैरह, तो अभी सब बंद कर दिया मैंने अभी, बोला क्या हो गया अभी 6 महीने अच्छी तरह से हमने सत्संग किया, 6 महीने तुमने खुद भजन किया ऊपर 6 महीने और गए 18 महीने गए कुछ तो कुछ अनुभूति हो गई ना। बोले क्या प्रभु जी 6.5 साल हो गया मैं जब कर रहा हूँ, ना मेरा प्रमोशन हो गया, ना मेरा पगार बढ़ा, ना मेरा बच्चे का तो एडमिशन हो गया, कुछ नहीं हो गया, बंद कर दिया सब कुछ। इसका मतलब क्या हुआ, वो सारी चीज जो कर रहा था ना वो किधर किधर पगार बढ़ेगा इंक्रीमेंट होगा इसी के लिए कर रहा था, कर तो रहा है उच्च चीज लेकिन कर रहा है एक घटिया उद्देश्य के लिए, तो बंद कर दिया उसे। इसलिए शुरू से हम लोग बताते हैं कि इन सब चीजों के लिए भगवान का भजन नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान का भजन करने से तो संकट बढ़ गया हमारे, पहले हम अच्छे थे पहले कोई समस्या नहीं थी, अभी तो हर दिन समस्या आती है, सोच रहा हूँ भजन छोड़ दूँ क्या, अभी पहले तो सुकून था सब कुछ। हम लोग क्या बोलते हैं, देखो आपके घर में आपने बहुत दिन झाड़ू लगाया नहीं और दिवाली में आपको लगा के झाड़ू लगाना चाहिए, तो आप झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, इसको आगे कर दिया उसको भी आगे कर दिया, पीछे पंखे के ऊपर चढ़ गए वो सब कर दिया, तो नाक भी धूल जाने लगी आपकी बहुत एकदम, कपड़ा भी गंदा हो गया पसीना भी आ गया, क्या है ये सब, साफ करने के बाद ठीक था एकदम लेकिन जब अंदर की गंदगी आप निकालना चालू करते हो तो नाक में जाएगी ना कुछ समय के लिए, हम क्या बोलेंगे चालू रखो थोड़ी देर के लिए, पूरा साफ सफाई करो फिर नाक में धुल नहीं जाएगी आपकी, फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैसा ही है भजन हमारा, जैसे ही भगवान का भजन शुरू करते हो सब अंदर की गंदगी बाहर निकलने लगते, कुछ भी दम घुटता है कुछ समय के लिए, उस समय सत्संग चलते रहना चाहिए, सत्संग चलते रहेगा उस समय और संयम बना के रखेंगे अच्छे भक्तों के साथ लगे रहेंगे, तो जब आगे जाएंगे तो फिर वो संकट कष्ट और घुटन नहीं होगा, क्योंकि हृदय की शुद्धि होती है ना भगवान का नाम जप करने से, चेतो दर्पणम अर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। इसलिए श्रद्धा से सत्संग में आना चाहिए, बीमार होने की भावना से आप गंगा नरसिंह में आए लेकिन यहाँ पर आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान आपको रोग और एडमिशन और बीमारी के बहाने अपना परिचय दे रहे हैं आपको, तो बताइए आपकी बीमारी जो आपको हुई यहां पर आने के लिए, जो मजबूर किया आपको आने के लिए, ये बीमारी अच्छी थी कि बुरी थी बताओ। जो चीज भगवान से मिला देती है वो कितनी भी कष्ट वाली हो वो शुभ ही होती है। भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का परिचय, भगवान की सेवा जिसको प्राप्त होती है वो कष्टमय घटना से प्राप्त होती है, तो वही हमारा भाग्य है। भाग्य की व्याख्या क्या है, जो हमको अच्छा लगे वो भाग्य नहीं है, जो भगवान से मिला देता है वो घटना ही हमारा भाग्य है। उसी को पवित्र शुभ और शुद्ध पवित्र उसी को कहते हैं जिससे भगवान मिल जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल महाबलेश्वर में हमारे एक मित्र है, हमको उनको मिलने जाने वाले अभी कुछ दिन के बाद में। वो जोड़ी जो है पति पत्नी अभी बहुत दिन के बाद भी शिफ्ट हो गया महाबलेश्वर, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और जब भी मैं मिलता हूँ बोलता हूँ प्रभु जी भगवान की कृपा है कि हम बीमार होकर भक्ति वेदांत में आए, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमको अच्छा हुआ बीमार होकर पैर का ऑपरेशन करने के लिए भक्ति वेदांत में आए, हमारा जीवन पूरा बदल गया। वो दुर्घटना के लिए हम भगवान का धन्यवाद देते हैं, तो हम तो बोलेंगे पागल आदमी क्या, इसका हड्डी टूट गया उसको भगवान का धन्यवाद देना है। लेकिन वो ज्ञानी व्यक्ति उसको पता चल गया है कि जिसी प्रकार से ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है, जिसी प्रकार से भगवान में मन लगता है या भगवान का परिचय होता है वो भाग्य का लक्षण है। ये जिसको समझ में आया ना वो भक्त है, उसको वो ज्ञान हो गया है उसी को भक्त कहते हैं। और हमको सबको उस प्रकार का भक्त बनना है, हमको वो नकली वाला डेकोरेशन वाला भक्त नहीं बनना है। मराठी में शब्द है ना भुजगावना, मतलब भुजगावना वो खेत में खड़ा करते हैं, वैसा भक्त नहीं बनना है हमको, वैसा हवा में घूमते हैं लगता है जिंदा लेकिन जिंदा नहीं, खाली पक्षियों को लगता है नहीं जिंदा कोई है क्या उधर से लगता है, लेकिन उसमें कोई जानने नहीं दिए, उसको हम भुजगावना कहते हैं मराठी में। वैसा भक्त नहीं बनना है हमको, हमको श्रद्धा वाला और विश्वास वाला भक्त बनना है जो जीवन की हर घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखता है और भगवान की कृपा ही समझकर उसको जीवन में चलाता है और उससे हर प्रकार की शुद्धि प्राप्त कर लेता है, हर प्रकार से भगवान से आसक्ति पैदा करता है, वो भक्त है जो हर स्थिति भगवान को धन्यवाद देता है। कष्ट आने पर बोलता है थैंक यू भगवान, बहुत थैंक यू वेरी मच, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, इसी को भक्त। हम सब लोगों को ऐसा भक्त बनना है, कोई नकली भक्त नहीं बनना है, कोई दिखावे का भक्त नहीं करना है, कोई 8 to 5 का भक्त नहीं बनना है ना। सुबह 8 to 5 जब बाहर निकलते हैं तो एकदम भक्त है, घर पे आने का पूरा एकदम उतार दिया तिलक पहुंच लिया तो फिर वापस बैक टू पेवेलियन, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त होता है वो 24/7 भक्त होता है, 9 to 5 भक्त नहीं होता है। तो भगवान का सेवक होता है वो 24/7 भगवान की सेवा करता है, और हम लोगों को इस प्रकार का भक्त बनना है, तब भी हमारा ये छोटा सा जो इनसिग्निफिकेंट जीवन है हमारा वो धन्य जीवन है। भगवान उस तरफ देखते हैं जो जीवन दुनिया की तरफ से तुच्छ हो, शायद इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन भगवान के लिए बहुत कीमती हो जा रहा है जो इस तरह से सोचता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम शुरुआत की बात दोबारा एक बार दोहराएंगे, जहां पर भगवान के प्रामाणिक भक्तों का संग होता है वहां पर दुनिया के सारे तीर्थ आकर अपना संग देते हैं, अदृश्य रूप में सारी नदियां सारे पवित्र सारे तीर्थ वहां पर आते हैं। दूसरी बात हमारी चर्चा का विषय था कि हमारा चरित्र जो है हमारा व्यवहार जो है वो बहुत शुद्ध और पारदर्शक और अच्छा होना चाहिए, उसी के जमीन पर भक्ति की वेल अच्छी तरह से उसकी परवरिश होती है। ऐसे चरित्र के अंदर ही भक्ति की जो कहते हैं ना उसको कल्टीवेशन जो है परवरिश जो है वो श्रेष्ठ तरीके से होती है, नहीं तो बाकी सब कुछ हमारे पास होगा वो सब बेकार है। अगर आपका चरित्र नहीं है तो भगवान को इम्प्रेस नहीं करता, वो 108 माला जप कर दिया लेकिन वहां जाकर किसी को झूठ बोल दिया, एक थोड़े पैसे के लिए इधर उधर के लिए झूठ बोल दिया, व्यवहार में किसी को चीट कर दिया, तो वो भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति वो है जो व्यवहार में साधारण व्यवहार में उतर जाती है, हमको वैसी भक्ति करनी, हर प्रकार के व्यवहार में हर प्रकार के वाचा में हर प्रकार की बात में हर प्रकार के आचरण में वो भक्ति का जो आपने स्वीकार किया ना वो दिखना चाहिए उसके अंदर, तब जाकर जीवन सफल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब लोगों का, आप लोग रविवार की शाम को टीवी देख सकते थे, सीरियल देख सकते थे, पिक्चर देख सकते थे, अरे आज तो शायद कोई भयंकर मैच भी चलने वाली है, सब दुनिया का ध्यान उधर है, आप वो सब छोड़कर भगवान के लिए आए हो, भगवान आप पर प्रसन्न है। क्योंकि जब आपने बाकी सारे प्रलोभन के सामने भगवान को चॉइस दिया कि भगवान ये सब नहीं चाहिए आज हम आपके लिए आ रहे हैं, भगवान ऋणी है आपके, दुनिया किसी प्रलोभन के पीछे भाग रही है और आप लोग आकर भगवान के सत्संग में बैठे हैं, भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है फिर कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब चीजें भूल भुलैया है, आज कोई चैंपियन है तो कल वो चैंपियन नहीं रहेगा, और वो जीतेंगे हारेंगे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, हमारे समझ में तो उधर ही है, जो कल थी उधर ही आज भी उधर ही है। कोई जीतेगा तो करोड़ों रुपए लेके घर जाएगा, अपनी बीवी को आनंद लेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो समय भगवान के विषय में लगाया, भगवान प्रसन्न होंगे तो आप पर ऐसी कृपा करेंगे जो करोड़ों की कृपा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कोई प्रश्न है आपका, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस डॉक्टर साहब, कोई प्रश्न है आपको? माता जी कोई प्रश्न है? सब लोग भगवान का नाम लीजिए आप, अभी सूखे मत रहिए ऐसे, बस सुना अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात बताई प्रभु जी ने, वो जीवन में उतारना है। जो सुनेगा भगवान का विषय में, उसको जीवन में उतारेगा तो भगवान का ध्यान आपके ओर आएगा, नहीं तो माया आपको पहले से देख रही है, आपके कर्म और कर्म के देवता आपको पहले से देख रहे हैं कैसा फटका देना है इसको, सब लोग देख रहे हैं, आपका हिसाब किताब सबके सामने है, वो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन आपने भगवान को अगर प्रसन्न करने का एक्टिविटी किया तो सब लोग भगवान की ओर देखेंगे, आप भी भगवान को देखेंगे, भगवान आपको देखेंगे और सब कष्ट आपके मिट जाएंगे। और बताइए किसी को कष्ट चाहिए क्या? कष्ट है तो मिटने की किसी को इच्छा है? हाँ सबको इच्छा है, मुझे भी इच्छा है कि मुझे कष्ट ना हो। भगवान का शरण लेने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे और कष्ट होंगे भी आपको छुएंगे नहीं, वो पता नहीं लगेगा नहीं कि आपके जीवन में कितना कष्ट है, आपको चेहरे में लगेगा कितनी रौनक है, समझता ही नहीं इतना कष्ट में, कष्ट आपको स्पर्श ही नहीं करेगा, कष्ट रहेगा अपनी जगह पर आपको स्पर्श नहीं करेगा। किसको स्थिति नहीं चाहिए ऐसे बताओ, सबको चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कीमत देना पड़ता है, इसलिए आप उसको जीवन में उतारो, भगवान का नाम रोज उच्चारण करना शुरू करो, अगर कोई गलत आता है छोड़ दो उसको, पवित्र जीवन करो अपना। और हम लोग सब लोग अपने पति को या अपने कोई बॉस को इंप्रेस करना चाहते हैं, अरे भगवान को इंप्रेस करो आप अपने एक्टिविटी से, भगवान का दिल जीतो, ऐसा लोगों को दिल जीतो जो आपका जीवन का कल्याण कर सकता है। ये बाकी लोगों को दिल जीतेंगे ना, आप इंप्रेस करेंगे, कुछ समय के लिए आपको लाभ होगा, फिर खत्म हो जाएगा लाभ, समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, खत्म। ऐसे व्यक्ति को इंप्रेस करो, समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, टाइम बदलेगा, उम्र बदलेगी, लेकिन उसका हमारा कनेक्शन नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा, वो लाभ आपके साथ जाएगा, ऐसे लोगों को इंप्रेस करो। इंप्रेस तो करना ही है आपने को, सबके जीवन में कोई हीरो होता है, हमारे जीवन में भगवान हमारा हीरो है, सबके जीवन में हीरो है, आपका भी कोई हीरो है, हम सब लोगों को भगवान को हीरो बनाना है। जैसे आपके हृदय से भगवान भगवान आपके हीरो बनेंगे तो आपके जीवन में ऐसा लाभ होगा, जीवन में जीवन होते हुए ना होते हुए मृत्यु के साथ हर समय आपका कल्याण होते रहेगा, इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। ऐसा कार्य करना है कि काया वाचा मन हमारा उद्धार होना चाहिए, सब तरह से लाभ होना चाहिए, और वो भगवान की भक्ति में होता है। तो भगवान की भक्ति में परम स्वार्थ का कल्याण होता है, बोलो आप, जो स्वार्थ के लिए हम लोग भाग रहे हैं उसका भी समाधान होता है उसके अंदर, परमार्थ के अंदर सबसे पहले स्वार्थ की पूर्ति होती है। हमको जब परमार्थ करते ना, सबसे पहले आपकी स्वार्थ की पूर्ति भगवान देते हैं, और परमार्थ मतलब हमारे साथ कई लोगों का उद्धार उसमें होता है कि साथ में, लेकिन स्वार्थ में केवल खुद की वृत्ति, खुद का उद्धार होने का संभावना है, लेकिन परमार्थ और भगवान की अध्यात्म भक्ति करने से हमारे साथ सब लोगों का, कई लोगों का उद्धार हो जाता है। कितनी भाग्य की बात है, अगर हम लोग आप वो कर सकते हो तो हमारे साथ भाग्यवान कोई नहीं। ओके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरे। यस सर,
कुछ आपने जैसा बताया कि ये व्यवहार सबके साथ अच्छा रखना चाहिए या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो हम जैसे ये सत्संग है तो थोड़े दिन उसका इफेक्ट रहता है, वापस हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, कंटिन्यू सत्संग करना चाहिए या, और कभी कभी जैसे आपने बोला इम्प्रेस नहीं करना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल हम जॉब करते हैं तो सबको पता है मैनेजर को इम्प्रेस करना पड़ता है, स्टाफ को थोड़ा रखना पड़ता है या ऐसा, क्योंकि
आपको मैं जो बताऊं ना उत्तर, शायद आपको बहुत सरप्राइज हो सकता है, शॉक भी लग सकता है। बाय द वे आपको हमको पता नहीं होगा शायद कि हम लोग का जन्म केवल सत्संग करने के लिए हुआ है, तो वो रेगुलर करे कि ना करे ये प्रश्न ही नहीं उठता है, उसको रेगुलरली करना ही है।
वो तो है रेगुलर, लेकिन ये कभी जैसे आपने बोला ना कि वो एक एग्जांपल दिया आपने कि 1.5 साल तक उसने भगवान का नाम लिया, बोले
इंक्रीमेंट नहीं हुआ,
लेकिन वो कभी कभी ऐसे अप डाउन और माइंड वो हो जाते हैं। और आज की
इसका उत्तर एक ही है, अच्छा सत्संग रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको अप्स डाउन्स में सब में सहायता मिलेगी। मुझे अभी आप भी स्वस्थ हो, अभी आपने अच्छी बात सुनी, कल आपको कुछ परेशानी हो गई तो आप दोबारा आएंगे उसी सत्संग में, उनका ही परामर्श लेंगे तो आपको उसी विषय में गाइड करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उस विषय में आप समझो किसी फाइनेंस वाले के पास जाएंगे, वो आपको बोलेगा ऐसे शेयर मार्केट में ऐसा कर वैसा कर, तो फिर आप फंस जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारति, मतलब आपके पास परेशानी है परेशानी नहीं है, आपको धन चाहिए आपको धन नहीं चाहिए, आप बीमार हो परेशान हो नहीं हो, किसी भी स्थिति में हो, आप एक ही जगह जाते हो, वो कौन सी जगह है, भगवान और भगवान के भक्त, और वहीं पर अपना समाधान ढूंढते हो, तब आपका कल्याण होगा। देखिए हम भी गृहस्थी है, हमारा भी जॉब है, हमारे पास भी समस्याएं हैं जो आपके पास है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या नहीं है और जिसको कोई परेशानी नहीं है, तो कोई चैलेंज नहीं है, हम सब लोग एक ही नाव में बैठे हुए हैं, बाय द वे प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन कोई खुश दिखाई पड़ रहा है, कोई परेशान दिखाई पड़ रहा है, क्यों, क्या, जिसने सत्संग का सहारा पूरा तरह ले लिया है वो चमकदार दिख रहा है आपको, और जो अभी भी सत्संग में नहीं आया हुआ है, नया नया है और पहली बार आया हुआ है, वो परेशान दिख रहा है। कुछ देर बाद सत्संग का सहारा लेगा, परेशानी हटते हुए नजर आएगी आपको। तो सत्संग जो है ना वो हमारा कॉमन बेस लाइफ लाइन है, बाकी सब लाइन जो है ना, आप बोले ना वो मैनेजर को प्लीज करना है, स्टाफ को भी संभाल कर रखना है, वो सब पैरेलल लाइन्स है। आप मेन लाइन पर रहो, सारी पैरेलल लाइन ठीक चलेगी आपकी। आप पैरेलल लाइन पे चलोगे तो मेन लाइन बाजू में हट जाएगी। हम लोग भी परिवार को देखते हैं, हमारे पास भी बच्चे हैं, माता पिता हैं, बहुत सारी समस्या हमारे पास भी है, लेकिन हमारे हमने अपने जीवन का लाइफ लाइन जो है ना वो भक्ति लाइन को पकड़ा है। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से अब तो हुआ नहीं, लेकिन मन में तो सोच लिया है कि हमको मेन यही करना है बस। भगवान के लिए ना उतना भी काफी है, आप यशस्वी ना हो या वो तो आगे की बात है, भगवान उसको यशस्वी करेंगे नहीं करेंगे तो वो अंजाम की बात है, लेकिन अभी आपने निर्णय लिया है कि हमको भगवान के विषय में ही चलना है और कुछ भी चलना नहीं है। हमको प्रधान, हमारा जो प्रधान है ना जीवन का प्रायोरिटी, वो भगवान और भगवान की भक्ति है, तो आपके जीवन में सारी चीजें आपको अपनी जगह पर गिरते हुए नजर आएगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर का जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस कि जब हम भगवान को हमारे जीवन के प्राधान्य क्रम में सबसे नंबर वन देते हैं, मतलब टॉप प्रायोरिटी भगवान है, बाकी बाद में व्यवसाय परिवार अपनी अपनी जगह पर है, बेकार नहीं है वो, अपनी अपनी जगह पर उसका स्थान है, लेकिन टॉप स्थान आपने भगवान को दिया है तो आपके जीवन में हर चीज अपनी अपनी जगह पर सेट होगी और समस्याएं आती रहेंगी जब तक आप दुनिया में हो, समस्या का समाधान भी होते रहेगा आपका अगर सत्संग आपका लगातार चला चलता रहे। हम अपने जो स्पिरिचुअल काउंसलर है ना, हमारे जो शिक्षा गुरु कहते हैं उसको, उसके पास हर चीज के लिए जाते हैं, जब नहीं हो रहा है ध्यान देने लगा तो भी उसके पास जाते हैं, कुछ नुकसान हो गया घर में, कुछ चोरी हो गई तो भी उसके पास जाते हैं, प्रभु जी वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, आप बोल रहे गीता पढ़ो लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, तो भी उसके पास जाते हैं, और अगर बीवी को एक्सीडेंट हो गया और उसको कुछ पैर में तकलीफ हो गया, ऑपरेशन हो रहा है, तो भी उसके पास ही जाते हैं। क्यों जाते हैं, जो हमारी श्रद्धा है कि हमने जब भगवान का सहारा लिया है तो भगवान हमारे हर समस्या का समाधान वही है, ऐसा नहीं कि ये चीज के लिए भगवान के पास, इसके ये चीज लक्ष्मी के पास, ये चीज शंकर के पास, वो चीज गणेश के पास, और वो चीज हमारे मामा के पास, ये हमारा क्या स्वार्थी व्यवहार नहीं होना चाहिए। श्रद्धा का मतलब क्या है, पूरे दिल और जान से एक व्यक्ति के चरणों में हमने अपना जीवन सब। पत्नी कैसे होती है, वो ये बोलती नहीं कि धन के लिए वो आदमी अच्छा है, अच्छा व्यवहार के लिए ये आदमी अच्छा है, सुंदर देखने के लिए ये पुरुष अच्छा है, ऐसा नहीं होता है, वो जो भी है वो उसका एक ही पुरुष है, जीवन में जो भी कुछ हो जाए सब चरणों में उसके ही है उसका। तो वो पति कैसे रहता है, ये औरत मेरे जीवन में इतनी समर्पित है, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा, है कि नहीं, जीवन में हम खुद देख रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। और जो पत्नी समझो उसका चार जगह बम बटा हुआ है, पत्नी बोलते पति बोलता है जानो दे तो सब, इसका मन कहीं स्थिर नहीं, तो पूरी जिम्मेदारी लेता नहीं। भगवान भी ऐसे ही है, आप एक बार लक्ष्मी को पुकारेंगे, एक बार शंकर को पुकारेंगे, तो भगवान क्या बोलेंगे, भाई पुकार तू, तो मेरी याद आई तो मुझे पुकारना, फिर मैं आऊंगा, और सबको पुकारेगा तो सब सोचेंगे कौन जाएगा व्यवहार की बात भी ऐसी है, हम भी अगर हमको आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करना है ना, हर स्थिति में एक व्यक्ति को पकड़ो, और व्यक्ति कैसा होना चाहिए, टॉप मोस्ट होना चाहिए, सबसे पावरफुल होना चाहिए, सबसे दयालु होना चाहिए और सब कुछ करने में समर्थ होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पकड़ो, उसी को पुकारो, फिर वो किसको किसको पुकार के लेके जाना है अपने हेल्प के लिए वो लेके जाएगा, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं कि फाइनेंसर को लेके जाना है कि और बुद्धि वाले को लेके जाना है, वो अपना अपना रिसोर्स करेगा और तुम्हारे पास लेके आएगा उसको। तुम एक आदमी को पकड़ो, बोलो तुम्हारी हमारी श्रद्धा आपके चरणों में है, बस भगवान आप जो करना है करो, हम आपके चरणों में गिरे हुए हैं। तो फिर वो लक्ष्मी को हेल्प कर लेना है, शंकर को लेना है या गणेश का लेना है, वो खुद तय करेंगे, हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है, तो आप चिंता मत करो, अपना नौकरी धंधा जो भी है वहां का दूधर निर्फुल करते रहो, मेन लाइन जो है ना आपकी लाइफ लाइन भगवान के चरणों में रखो बस, फिर आपका जीवन देखो कैसा चमकता है हर चीज में, कष्ट होते हुए भी आप चमकते रहेंगे, ये गारंटी है हमारी। और कोई प्रश्न है किसी का? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, थैंक यू वेरी मच, गुड क्वेश्चन। और भाई प्रश्न? ओके, थोड़ा दो मिनट कीर्तन करते हैं भगवान को अपने जीवन की शरण ग्रहण करने के लिए, अच्छी तरह से कीर्तन करते हैं। 5 मिनट के लिए आपको मैं प्रार्थना करूंगा कि दिल डाल के कीर्तन करो, पुकारते हुए, सब कुछ भूल कर ना, संकोच वंकोच नहीं होना चाहिए इसमें। हरे कृष्णा।